सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى
प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपको पसंदीदा प्रोग्राम सच्ची बातें, और सच्ची बातों में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। उस टॉपिक पर बात करने से पहले हम लेते हैं बच्चों का तारुफ, और इन दोनों चीज़ों से पहले मैं चाहूँगा कि आपको दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनाऊँ। तो चलते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर जुमे के दिन और रात में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? मुख्तसर सा टाइम लगता है। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। और वो 100 हाजतें कौन सी? जब क़यामत के दिन बंदा मुश्किल के अंदर होगा, उसमें 70 हाजतें पूरी फरमाएगा क़यामत के दिन, और 30 दुनिया की हाजतें पूरी फरमाएगा। और अल्लाह पाक एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में पहुंचाएगा। कैसे? जैसे गिफ्ट दिया जाता है ना, हमें कोई आके गिफ्ट देता है, हमें किसी खुशी होती है, इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र मुनव्वर में गिफ्ट की सूरत में दुरूद पाक हमारा पहुँचाया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरा इल्म मेरे इंतकाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी जिंदगी में है। तो कितनी प्यारी हदीस पाक है ना, कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम क्या चाहते हैं कि उन्हें तोहफा भिजाया करें। तो तोहफा भिजाने के लिए कितनी अच्छी रिवायत मिल गई कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जुमे के दिन, वैसे रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, मगर बिल खास तौर पर जुमे के दिन की रिवायत है कि जुमा के दिन बाज़ मुल्कों में बाज़ शहरों में तो जुमे के दिन छुट्टी का दिन होता है और वो हम खेल कूद में निकाल देते हैं, मगर हमें क्या चाहिए कि जुमे का जो दिन है वो इबादत का दिन है, वो मुसलमानों की ईद का दिन है। तो उसमें हमें क्या चाहिए कि हम इबादतें करें, जिस तरह दुरूद पाक की कसरत कर ली, और अपने जो हमारे अम्मी अबू कहें वो काम कर लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, 5 नमाज़ें वैसे ही पढ़ना फ़र्ज़ है हम पर, मगर जुमा के दिन तो जुमे की नमाज़ होती है, तो उसका अहतमाम करें, उसकी सुन्नतों का ख्याल रखें, इस तरीके से जुमा गुजारें। और ख़ास तौर पर आज से हम नियत कर लें, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी नियत कर लें कि जुमा के दिन इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत करेंगे। हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक की सूरत में गिफ्ट भिजवाएंगे, तो भिजवाएंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह
जी। तो हमने सुनी दुरूद पाक की फजीलत और इस पर अमल करने की नियत की। अब हम चलते हैं अपने बच्चों की तरफ और इनसे इनका तारुफ लेते हैं। जी, तो आपका नाम क्या है?
मेरा नाम हाशिर शफी है।
हाशिर शफी, अच्छा आप कहाँ से आए हैं?
मैं गार्डन से आया हूँ।
गार्डन से आए हैं आप? कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं?
मैं दारुल मदीना सदर कैंपस में पढ़ता हूँ।
दारुल मदीना सदर कैंपस में आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ।
क्लास 4 में, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है?
जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रजा अत्तारी है।
उस्मान रजा अत्तारी, माशाल्लाह। आप कहाँ से आए हैं?
जी, मैं रणछोड़ लाइन से आया हूँ।
रणछोड़ लाइन से। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं?
जी, मैं भी दारुल मदीना सदर कैंपस में पढ़ता
हूँ। आप भी दारुल मदीना सदर कैंपस में, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। आपकी क्लास कौन सी?
मेरी क्लास 5 है।
क्लास 5, अच्छा आप सीनियर हैं इनसे। अच्छा हाशिर, आप ये बताएं कि आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है कि मैं आज दारुल मदीना में पढ़ रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या बनूंगा, कुछ तो सोचा होगा आपने?
मैं हाफिज बनूंगा।
हाफिज बनेंगे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा मकसद है, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए आपके मकसद में। आपका क्या मकसद है?
जी, मैं इंशाल्लाह हाफिज भी बनूंगा, आलिम भी।
हाफिज भी और आलिम भी, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी आपकी नियतों पे आपको अजर अता फरमाए और आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और सुनने लायक है, अमल करने लायक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अपने बड़ों का अदब कीजिए, अपने बड़ों का अदब कीजिए। अपने बड़ों का अदब करने के हवाले से आज मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही प्यारी हदीस पाक, और बहुत अच्छा एक वाक्य भी सुनाऊंगा। तो चलते हैं हदीस पाक की तरफ, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना यानी वो हम में से नहीं, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। सगीरना कहते हैं हमारे छोटे, कबीरना कहते हैं हमारे बड़े। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। एक और हदीस पाक हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस बड़ों का अदब व एहतराम करो और ताजीम व तौकीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरा साथ पालोगे। जन्नत तो मिलेगी मिलेगी, और जन्नत में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम जन्नत में मेरा साथ पालोगे। तो कितनी प्यारी हदीस पाक है। इसी तरह कुरान पाक में भी है, तर्जमा और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनसे उफ तक ना कहना और इन्हें ना झड़कना और इनसे खूबसूरत नरम बात कहना और इनके लिए नरम दिली से आजजी का बाजू बिछा कर रख और दुआ कर, ए मेरे रब तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। प्यारे बच्चों आप भी गौर से सुने कि हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वालदेन का अदब व एहतराम का कितना फरमाया। हमें भी अपने वालदेन का अदब व एहतराम करना चाहिए, इनके सामने उफ तक नहीं कहना चाहिए। हमारी हमारे मिजाज के कोई खिलाफ बात हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो फौरन वालदेन पर गुस्सा हो जाते हैं। अम्मी से कोई ना कोई चीज़ मंगाना, वालदेन से कोई ना कोई हुक्म कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वालदेन है, इन्होंने हमें बड़ी मुशक्क़तों से पाला है, इनका हमें अदब और एहतराम करना चाहिए, इनकी हर हुक्म को मानना चाहिए। हमारे माशरे में अमूमन माँ की तो फिर भी थोड़ी बहुत कदर की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वालिद साहब को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि वालिद की वजह से माँ की नेमत मिली है, माँ की जो नेमत मिली है वालिद की वजह से मिली है। पूरे घर का बोझ तो वालिद ही अपने सर पर उठाता है, हमें उंगली पकड़कर चलना वालिद ने ही सिखाया। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो वालिद जन्नत के दरमियान दरवाज़ा है। वालिद की रज़ा अल्लाह पाक की रज़ा है। तो हमेशा हमें वालिदा का भी अदब और एहतराम करना चाहिए और वालिद साहब को, वालिद साहब को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में क्या है कि वालिदा की तो इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है, मानी जाती है बात, मगर इसी जगह पर अगर वालिद साहब हों तो वालिद साहब को जवाब ही नहीं दिया जाता, बात नहीं मानी जाती, अब वो आप खुद कर लें इस तरह कह देते हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए।
अच्छा उवैस भाई, अगर हमारे उस्ताद हमें कोई बात बोलते हैं, अगर हमारे दादी दादा दादी नाना नानी अगर हमें कोई बात कहते हैं, उनका हुक्म भी हमें मानना चाहिए या उनके हुक्म को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए?
बिल्कुल उनका हुक्म भी मानना चाहिए, वो भी हमारे बड़े हैं ना, बड़ों का हमें अदब करना चाहिए और बड़ों का अदब करके उनकी बातें माननी चाहिए। अच्छा बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल हो रहा होता है, हम तंग हो जाते हैं, जैसे बड़े उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, नाना हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो उनकी बातें हमें बुरी लग रही होती हैं कि बार बार हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये करो वो करो, हम कैसे इनकी बातों को माने। मगर अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये बेअदबी कहलाएगी। हमें चाहिए कि हम उनकी बातें गौर से सुने और उनको लब्बैक कहें, जी अम्मी जान, जी दादी जान, हम आपकी बात मानते हैं, फिर उनकी बात पर अमल करें। बज़ाहिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा मगर इसमें हमें सवाब भी बहुत सारा मिलेगा और उनका दिल भी बहुत खुश होगा। हमारा दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि जो उम्र और मकाम और मर्तबे में छोटा हो इसके साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करें, और जो हम में से बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, इनका अदब व एहतराम करें। हमें बड़ों में माँ बाप, चचा, ताया, खालू, मामू, बहन, भाई, दिगर रिश्तेदार, टीचर, पीरो मुर्शिद, आलिम दीन भी शामिल है इसमें, आलिम दीन हो गए, मस्जिद के इमाम हो गए, ये सब बड़े हैं। ज़िंदगी भर हमारा अपने बड़ों से राबता ज़रूर रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इनका अदब व एहतराम करें, इनके हुक्म का अदब व एहतराम करें। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, वक्किरिल कबीरा वरहमिस सगीरा तुराफिकनी फिल जन्ना, यानी बड़ों की तहजीम करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरा साथ पालोगे। मालूम हुआ बड़ों की इज्जत और ताजीम और अदब और एहतराम का कामयाब होने का जरिया है। बड़ों का अदब और एहतराम करना ये कामयाबी का जरिया है और जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ पाने का जरिया है। वालदेन का अदब और एहतराम के बारे में अल्लाह वालों का कितना प्यारा अंदाज होता था। हज़रत इमाम इब्ने शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी वालदा के बहुत फर्मा बरदार थे, मगर इसके बावजूद अपनी वालदा फातिमातुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ खाना नहीं खाया करते। किसी ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से इसकी वजह पूछी तो इरशाद फरमाया, मैं अम्मी जान के साथ इस डर की वजह से खाना नहीं खाता कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ पर उनकी नज़र पहले पड़ जाए और अनजाने में वो चीज़ उनसे पहले मैं खाकर उनका नाफरमान ना बन जाऊँ। आपने देखा कि लोग बच्चे अपने अम्मी अबू के बगैर नहीं खाते तो उन पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया कि आप क्यों अम्मी के साथ नहीं खाते, तो उन्होंने हाँ आप तो इतने फरमाबरदार हैं, मगर उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं इस वजह से अम्मी के साथ बैठ के नहीं खाता कि अगर मेरी किसी चीज़ पर नज़र पड़ी और वालदा की नज़र उस चीज़ पर पहले से पड़ चुकी हो और वो उठाना चाह रही हो, जैसे बाज़ औक़ात होता है ना हम दस्तर पर बैठे होते हैं और कोई चीज़ हम उठा रहे होते हैं और दूसरा भी कोई उठा रहा होता है, फिर हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात उससे छीन लेते हैं। हम जैसे बच्चे बैठे होते हैं तो बाज़ औक़ात उससे लेकर हम खा लेते हैं, बोलो चलो हमने पहले उठा लिया हम खा रहे, मगर ये चीज़ बड़ों के साथ तो नहीं कर सकते, छोटों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। हमें छोटों के साथ भी अदब व एहतराम और शफकत करनी चाहिए और ईसार का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि अगर उसको ये चीज़ मिल जाए तो मैं ईसार करता हूँ मुझे सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा?
सवाब
मिलेगा। तो सवाब की लालच हमें हमारे अंदर ज्यादा होनी चाहिए। जी
कुछ जो आपस में भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई वो दूसरा चीज ले आया, अब दूसरे ने कहा मेरे को भी खानी है मैं तुमसे ले लूंगा, अब दूसरे ने उससे छीन ली, तो क्या ऐसा करना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में, अभी हम तो वालदेन की बात कर रहे हैं कि वालदेन के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, वालदेन तो हमें हम पर चीजें कुर्बान करते हैं, मगर बहन भाइयों में आपस में क्या होता है कि चीजों पर लड़ाई होती है और लड़ाई होने से क्या होता है आपस में रंजिशें पैदा होती हैं, मोहब्बतें कम होती हैं और फिर ये हमारे लिए भी नुकसानदेह होती है और वालदेन को भी इससे रंज पहुंचता है, गम होता है, दुख होता है कि आपस में हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। हमें अपने भाइयों पर चीजें,
वालदेन को दुख होता है कि हम एक दूसरे दोनों भाई बहन है फिर भी लड़ रहे हैं,
हाँ दोनों भाई बहन होकर लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें भी चाहिए कि हम लड़ाई झगड़े ना करें किसी भी चीज पर, कोई चीज हो, खाने की चीज हो या कोई पहनने की चीज हो, बाजू का पहनने की चीज पर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।
हमारी नीयत हो कि हमें ये पहनने, लेकिन हमारा भाई वो पहन ले तो हाँ, उदास नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं
जी।
भाई ये देखे जैसे कि अब कुछ होता है कि अगर दुकान पे गए दो भाई और वो अबू कपड़े खरीद रहे हैं उनके, अब एक ने कहा मेरे को ये चाहिए, दूसरे ने कहा मेरे को मैं भी ये पहनूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं पहनने दूंगा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर इसार का जज्बा पैदा करना चाहिए और वालदेन के फरमा बरदारी करनी चाहिए। अगर वालदेन कहते हैं कि नहीं ये वाला सूट आपके लिए है और ये वाला छोटे भाई के लिए है, तो वालदेन की बात माननी चाहिए, उनसे जिद
नहीं करनी चाहिए।
जिद वैसे भी बहुत बुरी चीज है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसमें हम सुन रहे थे माँ बाप के हवाले से। माँ बाप का एहतराम और इनकी खिदमत करना यकीनन बहुत बड़ी सआदत मंदी है हमारे हक में। इनके दिल से निकली दुआ हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सकती है। अगर हमारे हक में इन्होंने दुआ कर दी, इनकी दुआ हमारे हक में ये बहुत बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। अब हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ साथ हर मुसलमान का अदब व एहतराम करें। हर मुसलमान का, पहले हमने सुना वालदेन का, फिर रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी का, अब हर मुसलमान का अदब व एहतराम करना चाहिए। इनको तकलीफ पहुंचाने से, मुसलमान कोई भी, हमें इल्म में है कि कोई भी मुसलमान है इसको तकलीफ पहुंचाने से बचे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे से ताल्लुक ना तोड़ो, पीठ ना फेरो, बुग्ज ना रखो, हसद ना करो, ए खुदा पाक के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से तीन दिन से ज्यादा ताल्लुक को तोड़े रखे। तो हमें भी चाहिए कभी दोस्तों में नाराजगी हो जाए, किसी बात पर रंजिश पैदा हो जाए, कोई बात उसने नहीं मानी, कोई हमारी लड़ाई हो गई, तो हमें जाके पहले ही सुलह कर लेनी चाहिए। 3 दिन का तो हमें फरमाया गया है कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं करें, मगर हमें कुछ वक्त भी नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना चाहिए और उनके साथ फौरन सुलह कर लेनी चाहिए। इस हदीस पाक को जहन में रख के हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सोच कर अगर हम करेंगे तो हमें और बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम उस्ताद के अदब और एहतराम का भी हमें हुक्म देता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मन ला अदब लहू ला इल्म लहू, यानी जो बेअदब हो इसे इल्म नाफे हासिल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं ना कि इल्म दीन हासिल करें, आपने फरमाया कि जैसे हम चाहते हैं कि आलिम बने, बामल आलिम बने, इल्म नाफे जो इल्म फ़ायदा पहुंचाता है, तो हम अगर चाहते हैं इल्म नाफे हासिल करें तो हम बाअदब बन जाएं, हम अपने उस्तादों का अदब करें। हमारे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि मन ला अदब लहू ला इल्म लहू, यानी जो बेअदब हो इसे इल्म नाफे हासिल नहीं होता। तो जो भी उस्ताद की बेअदबी करता है फिर वो बच्चे कामयाब नहीं होते। हमें चाहिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा कर भी रहा है तो उसको समझाएं कि हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, इनका एहसान है, ये हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें इनका अदब करना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गान दीन अपने उस्तादों का बेहद अदब व एहतराम किया करते थे, इनकी मौजूदगी में निगाह झुका कर रखते थे, अटेंशन होकर इनकी अटेंशन हासिल किया करते थे, इनकी तवज्जो हासिल किया करते थे। जैसे कि हज़रत सैदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इल्म की क्लास की तारीफ करते हुए एक कुरेशी से फरमाया, मस्जिद नबवी में चले जाओ, वहाँ एक हल्के में लोग अटेंशन होकर यूं बैठे होंगे गोया इनके सरों पर परिंदे हैं, जान लेना यही हज़रत सैदना इमाम अबू अब्दुल्ला हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इल्म की क्लास है। कैसे लोग बैठे होंगे? लोग इस तरह बैठे होंगे जैसे जब बंदा इस तरह बैठेगा, परिंदा कहाँ बैठता है? कभी आपने देखा है परिंदा इंसान के ऊपर बैठ जाए? नहीं बैठता ना। परिंदा बैठता है किसी दीवार पर, क्योंकि दीवार हिलती नहीं है। तो अब उनकी क्लासों में इतना वो अटेंशन के साथ निगाहें झुका कर इल्म दीन हासिल किया करते थे कि उनके ऊपर आकर कबूतर बैठ जाया करते थे। मतलब वो समझते थे कि ये दीवार है, ये हिलने वाली चीज़ ही नहीं है, हाँ, ऐसा अदब व एहतराम के साथ इल्म दीन हासिल किया करते थे। और उनके इल्म दीन हासिल करने की बरकत है कि आज हमारे पास इतनी सारी रिवायात मिली, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनने को मिलती हैं, उन लोगों ने सुनी, उन्होंने आगे पहुँचाया, आगे पहुँचा पहुँचा के आज हम तक ये हदीसें पहुँची। नहीं, इस हलके में मजाक मस्करी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। हमारी क्लासों में क्या होता है, जैसे उस्ताद चले जाए या उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर लिख ही रहे होते हैं तो भी हम पीछे से आपस में बातचीत और मजाक मस्करी,
कैसे लिख रहे हैं ये,
हाँ ये लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज को क्या पहन के आए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं।
उस्ताद को कमेंट पास नहीं करने
चाहिए, हमें उस्ताद के कमेंट पास नहीं करने चाहिए और उस्तादों के लिए कुछ बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। जब सोचेंगे तो बोलेंगे ना, हमारे जहन में इस तरह की बातें ही नहीं आनी चाहिए। हम इनको बड़ा समझें, इनका अदब करें, इनका एहतराम करें। जब ये सारी चीज़ें हमारी जहन में होंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल हमारे मुंह से इनके लिए कोई बुरी बात नहीं निकलेगी। याद रखिए, पीर व मुर्शिद की ताज़ीम व तौकीर और इनका अदब व एहतराम भी हर मुरीद पर लाजिम है। पीर व मुर्शिद वो हस्ती हैं कि जिनकी सोहबत दिल में खौफ खुदा और इश्क रसूल पैदा करती है। क्या पैदा करती है?
खौफ खुदा और इश्क रसूल।
अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि खौफ खुदा और इश्क रसूल क्या है। इन शॉर्ट बता देता हूँ, खौफ खुदा मतलब ये कि अल्लाह ताला से डरना, और इश्क रसूल मतलब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपको आपकी ज़िंदगी संवार सकती हैं अगर आप इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो दें। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल का जब खौफ होगा तो उस खौफ से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब हमें सच्ची मोहब्बत होगी तो उनकी हर बात को हम मानेंगे, उनकी हर बात को हम मानेंगे, उनकी सुन्नत पर हम अमल करेंगे। तो हमने सुना कि पीर व मुर्शिद वो हस्ती है जिनकी सोहबत से, जिनकी सोहबत, अब सोहबत ज़रूरी नहीं है कि हम उनके पास बैठ कर हासिल करें, सोहबत हम मदनी चैनल के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। आप लोग हमारे पीर व मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के मुरीद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा आता है, इस तरह के दीगर सिलसिले आते हैं, तो वो सुनेंगे, तो ये भी एक तरीके से सोहबत हासिल करना है। और पीर मुर्शिद की सोहबत हासिल करने से खौफे खुदा और
इसके रसूल हासिल होते हैं,
इसके रसूल पैदा करती है ये सोहबत। नीज बातिन यानी दिल की सफाई होती है, गुनाहों से बेजारी मिलती है, अच्छे आमाल में इजाफा होता है, नेकियां करते हैं अच्छे आमाल में इजाफा होता है, ईमान की सलामती के लिए फिक्रमंदी रहने की सोच मिलती है। लिहाजा मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद से फैज़ पाने के लिए पैकर अदब बना रहे। कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, जब कोई मुरीद अदब का ख्याल नहीं रखता तो वो लौट कर वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। तो हमें चाहिए कि अपने पीरो मुर्शिद का अदब और एहतराम करें। अब हमने आज सुना कि हमें अपने बड़ों का अदब और एहतराम करना चाहिए। इसके कुछ अंदाज आपको कुछ मिसालें मैं दे देता हूँ। जैसे वालदेन को आता देख कर ताज़ीमन खड़े हो जाए, इससे वालदेन बड़े खुश होंगे। आप एक मरतबा प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा प्यारे बच्चों, आप भी ज़रूर प्रैक्टिकल कीजिएगा। वालदेन आ रहे हों और उनके आता देखकर आप खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह अज़्जल उनके दिल में बड़ी खुशी दाखिल होगी।
और फिर जब हम लोग बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जब उस्ताद भी आते हैं बच्चे क्लास में खड़े हो जाते हैं, ये भी अदब होता है।
ये भी अदब होता है इसी तरीके से। असल में उस्ताद के साथ क्या है, वो उनके साथ हमारा वो ताल्लुक होता है कि हम एक आध घंटे उनके साथ रहते हैं, दो घंटे चार घंटे पाँच घंटे, तो ये हम नॉर्मली करके घर चले जाते हैं। मगर वालदेन के साथ जब आप ऐसे करेंगे ना, असल वालदेन भी आपके एक तरीके से उस्ताद हैं। जब आप स्कूल नहीं लगे थे तो उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी और वो उन्हीं चीज़ों की उनकी तरबियत का नतीजा है कि आप उस पर अमल कर रहे होते। तो हमेशा वालदेन का भी उस्ताद की तरह अदब करना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ हमारे अंदर इंशाअल्लाह इल्मी तौर पर भी इजाफा होगा और अमली तौर पर भी इजाफा होगा। मतलब हम अमल भी करने वाले वालदेन का अदब करेंगे ना, तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और उस पर अमल की सआदत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये इस पर ज़रूर आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, वालदेन को आता देख के ज़रूर खड़े होकर देखिएगा, इंशाअल्लाह वालदेन की आपको दुआएं मिलेंगी। दिन में कम से कम एक बार वालिद के हाथ और वालदा के पाँव चूमें, इंशाअल्लाह वालिद के हाथ और वालदा के पाँव चूमने की आपको इंशाअल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी। ये भी ज़रूर कीजिएगा। उनसे आँखें हरगिज़ ना मिलाएं, आँखें मिलाकर बात करते हैं ना बाज़ों का, जी अब्बू इस तरह करके आँखें फाड़ के देख रहे होते हैं अब्बू को। भाई अब्बू हैं, अदब और एहतराम करना है,
निगाहें
नीचे, अदब और एहतराम से, अदब और एहतराम से खड़े होना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। जी अबू जो आपने फरमाया मैं वो करूँगा, इनसे उनका दिल खुश होगा और वो जो आपको सिखाना चाह रहे हैं वो आपको सीखने को भी मिलेगा। उनसे आँखें हरगिज़ ना मिलाएं, धीमी आवाज़ में बात कीजिए। अब उन्होंने कोई आपको कोई बात पर डांटा, फौरन हमारी भी तेज़ आवाज़ निकल जाती, बड़ी आवाज़ से हम जवाब दे, हाँ मेरी तो गलती ही नहीं थी, मेरी तो बात से सुन लो, मेरी पहले बात तो सुननी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं
करना,
वो हमारे भले के लिए कहते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए, धीमी आवाज़ में उनसे बात करनी चाहिए, उनको गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए। इनकी तीखी बातों पर, तीखी बातों से क्या मुराद है, इनकी तीखी बातों पर यानी गुस्सा, कोई हमारी मिजाज के खिलाफ बात कर दी जो हम चाह रहे हैं कि ये बात वालिद साहब से नहीं होनी चाहिए, वालिद साहब हमारे लिए ये बात नहीं करें, मगर वालिद साहब ने वो बात कर दी, तो उस पर सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए,
सब्र करना चाहिए।
बहस करके उलझना नहीं चाहिए, बहस करके बंदा उलझ जाता है ना, इससे फ़ायदा नहीं है, सब्र करना चाहिए। वालदेन की बात सुन लें, अदब और एहतराम से बात हो गई, फिर नहायत ही धीमे अंदाज में अपनी बात उनको पेश कर दे कि भाई मेरा ये मौकफ है। अब जिस तरह से हम धीमी आवाज़ से बात कर रहे हैं वालदेन से, इसी तरीके से जब अम्मी अब्बू को जब पुकारें ना, तो भी प्यार मोहब्बत से पुकारना चाहिए, इस तरह से पुकारें कि वो आपकी आवाज़ सुन के भी उनके दिल में खुशी पैदा हो। वैसे वालदेन को खुशी ही होती है अपने बच्चे की आवाज़ सुन के, मगर हम इस अंदाज़ में बुलाएं कि हमारे बुलाने के अंदाज़ से और उनके दिल में खुशी हो। जैसे अब्बू जान, अम्मी जान, नानी जान, दादी जान, दादा जान, इस तरीके से हम उनको जब बुलाएंगे ना, वो बहुत खुश होंगे, और जब वो बहुत खुश होंगे तो हमारे लिए दुआ करेंगे और उनकी दुआ हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। उनका हर हुक्म जो मुआफ़िक़ शरा यानी शरीयत के मुताबिक हो फौरन कर दीजिए। अगर वो हमें कोई बात कहते हैं ऐसी जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उस पर बहुत अमल जल्दी करना चाहिए। जैसे शरीयत के ख़िलाफ़ की एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ऐसा ऐसा होता नहीं होगा, एक मिसाल दे देता हूँ कि वालदेन कहें कि बेटा नमाज नहीं पढ़ो, ऐसा तो नहीं कहते वालदेन, वालदेन तो खुश होते हैं बच्चा जब नमाज़ पढ़ रहा होता है, बोलते यार आज बच्चा हमारा नमाज़ पढ़ रहा है बगैर बोले और इस तरीके से इन्हें खुद पढ़ने बैठ गया है, तो मतलब क्या हुआ है इसको, आज आज कोई दर्स सुन लिया इसने, इस तरह के होते हैं ना। तो इस तरीके से वालदेन कभी शरीयत के ख़िलाफ़ बोलते नहीं, अगर बोले शरीयत के ख़िलाफ़ जो हमने सुना है जो हमने बात सुनी है जो शरीयत के खिलाफ वालदेन कह रहे हैं, तो अदब व एहतराम से उनको बताएं कि ये बात शरीयत के खिलाफ है। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो टॉपिक था बहुत ही प्यारा टॉपिक था, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, आपको भी और हमारे प्यारे बच्चों को भी। तो हमें इस टॉपिक को याद रखना है और इस पर अमल करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जजाए दे, आपको आपके मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।